लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे अर्थ याचना करते हैं कि विश्व के समस्त राष्ट्र और नागरिक हथियारों के उपयोग को कम कर शांति और अहिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गौडियम पर चर्चा कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार प्रचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गौडियम प्रकाशित किया। 24 नवंबर सन 2013 को प्रकाशित किए गए अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस पूरी कलीसिया से यह आग्रह करते हैं कि हम सभी ख्रिस्तीय अपने जीवन में सुसमाचार के एक नए अध्याय की शुरुआत करें। वे कलीसिया को शिष्यों का एक समुदाय घोषित करती जो सदैव प्रेरिताई के कार्य हेतु बुलाई गई है। एवंजेली गौडियम संत पापा फ्रांसिस के परमाध्यक्षीय काल के विशेष मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जहां हम ख्रिस्तियों का गरीबों के प्रति कर्तव्य, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य कानूनी बातों के संबंध में उत्तरदायित्व का जिक्र पाते हैं। वे सामाजिक प्राथमिकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। श्रोताओं, हमने एवंजेली गौडियम के चौथे अध्याय की शुरुआत की है, जो सुसमाचार प्रचार के सामाजिक पक्ष का जिक्र करता है। सुसमाचार प्रचार करना ईश्वर के राज्य को विश्व में प्रकट करना है। सुसमाचार के केंद्र बिंदु में हम सामुदायिक जीवन और दूसरों के संग हमारे जुड़े रहने को पाते हैं। श्रोताओं, हमने अपने पिछले प्रसारण के अंतिम भाग में सुसमाचार के प्रति निष्ठा की चर्चा की। सुसमाचार के प्रति निष्ठा को हम गरीबों के प्रति अपने कार्यों, भ्रातृत्व में प्रेम, विनम्रता, उदार सेवा, न्याय और दया की भावना में व्यक्त करते हैं। हमें सुसमाचार के इन मूल्यों को अपने में मजबूती से वहन करने का आह्वान किया जाता है। यीशु ने हमें अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से इन बातों की शिक्षा दी, जिसे हम अपने भाई बहनों की ओर अपने इन मनोभावों की परख करें। श्रोताओं, जब संत पौलुस यरूशलेम में शिष्यों के बीच सुसमाचार प्रचार का मूल्यांकन करते कि क्या वे सही दिशा में हैं या व्यर्थ की दौड़ लगा रहे हैं, तो इसका सही तरीका गरीबों को नहीं भूलने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह अपने में महत्वपूर्ण तथ्य है। विशेषकर पौलुस के द्वारा स्थापित समुदाय सिर्फ गैर ख्रिस्तीय समुदायों तक ही सीमित होकर न रहते हों। आज के समय में हम इसे एक दूसरे तरह से गैर ख्रिस्तीय स्वार्थ स्वरूप बढ़ता हुआ पाते हैं। हम हमेशा पर्याप्त रूप से सुसमाचार की सुंदरता को प्रतिबिंबित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक संकेत है जिसकी कमी हमारे लिए कभी नहीं होनी चाहिए। उन लोगों की देखभाल जो सबसे निचले तबके के हैं, जिन्हें समाज त्याग देता है। कभी कभी हम दिल और दिमाग से सख्त हो जाते हैं। हम भूल जाते, विचलित हो जाते और समकालीन समाज द्वारा पेश की जाने वाली उपभोक्ता की असीम संभावनाओं के द्वारा भटक जाते हैं, अपने मार्ग से दूर हो जाते हैं। ऐसा होना हमारे लिए हर स्तर पर एक तरह से अलगाव की ओर हमें अग्रसर करता है, क्योंकि कोई समाज तब अलग थलग पड़ जाता है जब उसके सामाजिक संगठन, उत्पादन और उपभोग के स्वरूप अपने को दूसरों के लिए उपहार स्वरूप देने में अपने को जटिल बना लेते और जिसके कारण लोगों के बीच एकता स्थापित करना अधिक कठिन हो जाता है। श्रोताओ, ईश्वर के हृदय में गरीबों के लिए एक विशेष जगह है। इतना ही नहीं, इसके लिए उन्होंने अपने को उनकी तरह दरिद्र बना लिया। मुक्ति विधान का संपूर्ण इतिहास हमारे लिए गरीबों की उपस्थिति से भरा है। मुक्ति का आगमन हमारे लिए उस दीनहीन कुंवारी के हाँ उच्चारित करने से होता है, जो एक महान साम्राज्य के हाशिए पर एक छोटे शहर में निवास करती थी। मुक्तिदाता का जन्म एक गौशाले जानवरों के बीच हुआ, जैसे कि हम गरीब परिवार के बच्चों को देखते हैं। उन्हें मंदिर में पंडुकों के एक जोड़े के साथ समर्पित किया गया। यह चढ़ावा उनकी ओर से किया जाता था, जो मेमने चढ़ाने की हैसियत नहीं रखते थे। उनका लालन पालन एक साधारण कार्यकर्ता के परिवार में हुआ और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से कार्य करते हुए अपनी जीविका अर्जन की। जब उन्होंने ईश्वरीय राज्य की घोषणा शुरू की, गरीबों के दलों ने उनका अनुसरण किया, जो हमें उनके वचनों का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, जिससे मैं गरीबों को सुसमाचार का संदेश सुनाऊं। उन्होंने दुख से दबे और गरीबी से कुचले गए लोगों को इस बात की निश्चितता दिलाई कि उनके लिए ईश्वर के हृदय में एक विशेष जगह है। धन्य हैं वे जो दरिद्र हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। उन्होंने अपने को उनमें से एक बना लिया। मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया। इस भांति उन्होंने उन सबों को करुणा की शिक्षा दी, जो स्वर्ग राज्य के लिए एक अति महत्वपूर्ण बात है। श्रोताओ, कलिसिया का गरीबों के लिए विकल्प मुख्य रूप से सांस्कृतिक, समाज शास्त्रीय, राजनीतिक या दार्शनिक होने की अपेक्षा एक ईश शास्त्रीय श्रेणी है। ईश्वर सर्वप्रथम गरीब को अपनी करुणा प्रदर्शित करते हैं। इस दिव्य विकल्प का ख्रिस्तीय विश्वासियों के जीवन में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनका बुलावा इस मनोभाव को धारण करने से है जो यीशु ख्रिस्त का था। इससे प्रेरित कलिसिया अपने लिए गरीबों के संग होने का चुनाव करती है, जिसे एक तरह से ख्रिस्तीयता में करुणा के अभ्यास को एक विशेष स्वरूप सा देखा जाता है, जिसे कलिसिया की संपूर्ण रीति साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत करती है। संत पापा बेनेडिक्ट सोलमे ने अपनी शिक्षा में इसके बारे में कहा है कि यह विकल्प ख्रिस्तीय विश्वास में निहित है, जहां ईश्वर दरिद्र बनते हैं, जिससे वे अपनी दरिद्रता से हमें समृद्ध बना सकें। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि यही कारण है कि मैं गरीब कलिसिया की चाह रखता हूं, जो गरीबों के लिए हो। वे हमारे लिए बहुत सारी बातों की शिक्षा देते हैं। वे केवल विश्वास की भावना को साझा नहीं करते हैं, बल्कि वे अपनी कठिनाइयों में दुख भोगते ख्रिस्त को जानते हैं। हम अपने को उनके द्वारा सुसमाचार से पोषित होने दें। नवीन सुसमाचार का प्रचार हमारे लिए एक निमंत्रण है, जहां हम मुक्तिदायी शक्ति को, जो उनके जीवन में व्याप्त है, घोषित करते और उन्हें यात्री कलिसिया के मार्ग में केंद्र बिंदु की तरह रखते हैं। हम उनमें ख्रिस्त को देखने हेतु बुलाए गए हैं, अपनी आवाज को उनके अधिकारों के लिए उठाने, साथ ही उनके संग मित्रता में प्रवेश करते हुए उन्हें सुनने, उनके बारे में बोलने और ईश्वर के रहस्यात्मक विवेक का आलिंगन करने के लिए, जिसे ईश्वर उनके माध्यम से हमारे लिए प्रकट करने की चाह रखते हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गौडियम सुसमाचार की खुशी पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। इबादत करो।
रखो के वही एक खुदा है।
हमको ये जीवन उसी ने दिया है।
उस चारागाह से हम सब
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने दुनिया भर के तीर्थयात्रियों को एक संदेश भेजा जो नॉर्विच के कैथोलिक और एंग्लिकन महागिरजा घर में नॉर्विच की मदर जूलियन की 650वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। संत पापा ने कहा, वास्तव में क्रिस्तीय परंपरा के लिए इस अंग्रेज रहस्यवादी का गहरा महत्व सदियों से हमसे बात करता है और तेजी से स्वीकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, वास्तव में उनका मातृत्व प्रभाव विनम्र गुमनामी और गहन धर्मशास्त्रीय अंतर्दृष्टि समयोजित अनुस्मारक के रूप में खड़े हैं कि ईश्वर की प्रेममयी व्यवस्था और जीवन की पवित्रता में विश्वास हमारे जरूरतमंद भाइयों और बहनों की उदार सेवा में व्यक्त किया गया है। न केवल कालातीत सत्य है, परंतु ख्रीस्त के शिष्यों का जीवन एक न्यायपूर्ण और भ्रातृ समाज का ताना बाना है। संत पापा ने जोर देकर कहा कि आध्यात्मिक सलाह और प्रोत्साहन चाहने वालों का स्वागत करने में मदर जूलियन की उदारता विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा कि दूसरों की खातिर आत्म सुविधा का त्याग करने की यह इच्छा विशेष रूप से अलगाव और अकेलेपन की स्थानिक समस्याओं का जवाब देने के लिए आवश्यक है, जो भौतिक रूप से संपन्न देशों में बहुत से लोगों द्वारा महसूस की जाती है। अपने संदेश को समाप्त करते हुए संत पापा ने कहा कि मदर जूलियन को प्रकट किया गया ईश्वर की दया और करुणा का संदेश आज भी दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसके ईश्वरीय प्रेम के रहस्योद्घाटन द्वारा हम जानते हैं कि उसे ईश्वर की कृपा से सिखाया गया था कि हमारे बीच बुराई की उपस्थिति के बावजूद सभी चीजें अच्छी होंगी। इस संबंध में संत पापा ने यह कहते हुए अपने संदेश को विराम दिया, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे सभी जो युद्ध, अन्याय, पारिस्थितिक आपदा या आध्यात्मिक गरीबी की दबाव वाली चुनौतियों का सामना करते हैं, उन्हें ज्ञान के इन स्थायी शब्दों से सांत्वना और मजबूती मिले। अंत में संत पापा ने वर्षगांठ समारोह में भाग लेने वाले सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जैसा कि सूडान में सूडानी सशस्त्र बल और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच लड़ाई जारी है और शांति के कोई ठोस संकेत नहीं मिलने के कारण पड़ोसी दक्षिण सूडान में कलीसिया उन हजारों शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए जुटी है जो हिंसा से भाग रहे हैं। जूबा के महाधर्माध्यक्ष स्टीफन अमेयू मार्टिन अपने महाधर्म प्रांत के सभी धार्मिक समुदायों सहित हिल मिल मिशनरियों, द व्हाइट फादर्स एंड द व्हाइट सिस्टर्स ऑफ द सेक्रेट हार्ट को संबोधित एक पत्र में सूडान के उन भाइयों और बहनों के लिए अपने घर खोलने हेतु आमंत्रित किया जो दक्षिण सूडान में शरण मांग रहे हैं। जूबा सरकार के अनुसार जो सूडान की राजधानी खार्तूम में फंसे अपने नागरिकों को ले जाने के लिए एक दर्जन ट्रक भेजने का दावा करती है, अब तक युद्ध से भागकर 50,000 से अधिक लोग दक्षिण सूडान पहुंचे हैं। मिस्र और चाड को क्रमशः 70,000 और 30,000 शरणार्थियों का प्रवाह मिला है। प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अनुसार सूडान में 70,000 से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। अब तक इन संघर्षों में कम से कम 750 लोग मारे गए हैं और 5,500 से अधिक लोग घायल हुए हैं, साथ ही कई संपत्ति और बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए हैं। लड़ाई ने मुस्लिम राष्ट्र में छोटे ख्रिस्तीय समुदाय को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है, जहां विभिन्न कैथोलिक ढांचों और गिरजाघरों पर बमबारी की गई है, जिसमें अल ओबिद का कैथोलिक महागिरजाघर भी शामिल है जो 20 अप्रैल को एक रॉकेट द्वारा मारा गया था। कई धर्म बहने और पुरोहित खार्तूम से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। उधर कारितास इंटरनेशनल महासभा ने सोमवार 15 मई को अपने लिए नए महासचिव के रूप में श्री एलिस्टेयर डटन का चुनाव किया। कारितास द्वारा जारी एक बयान में बताया गया है कि वे 2027 तक कारितास परिसंघ का नेतृत्व करेंगे, जिसमें 162 राष्ट्रीय कारितास सदस्य संगठन शामिल हैं। उनका चुनाव कारितास इंटरनेशनल के नए अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष तार्सिसियो के चुनाव के 2 दिन बाद आता है। श्री डटन वर्तमान में कारितास स्कॉटलैंड के कार्यकारी निदेशक हैं और मानवतावादी क्षेत्र में 25 से भी अधिक वर्षों का अनुभव रखते हैं। 70 से अधिक देशों में परियोजनाओं का नेतृत्व किया है। 2009 से 2014 तक उन्होंने कारितास इंटरनेशनल के मानवतावादी निदेशक के रूप में कार्य किया है। साथ ही 15 मई को श्री कर्स्ट्री रॉबर्टसन को कारितास इंटरनेशनल के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। वे 2019 से कारितास ऑस्ट्रेलिया के सीईओ हैं। रॉबर्टसन ने पहले कारितास ऑस्ट्रेलिया में प्रशांत कार्यक्रमों के समन्वयक और संचार समूह के नेता सहित विभिन्न पदों में काम किया है। उधर गाजा पट्टी में और उसके आसपास बढ़ती हिंसा एक बार फिर से बच्चों के जीवन पर कहर बरपा रही है। हवाई हमलों को याद करते हुए यूनिसेफ ने निंदा की कि इस सप्ताह 4 साल के बच्चे सहित कई लोगों की जान ले ली और कई को घायल कर दिया। यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष हर बच्चे, विशेष रूप से सबसे वंचित बच्चे के अधिकारों की रक्षा के लिए 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में काम करता है। यह बाल स्वास्थ्य और पोषण, सुरक्षित जल और स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल निर्माण, माताओं और शिशुओं के लिए HIV की रोकथाम और उपचार, और हिंसा एवं शोषण से बच्चों एवं किशोरों की सुरक्षा का समर्थन करता है। रविवार को संत पापा फ्रांसिस ने भी पौत्र भूमि में शांति की अपील की। उन्होंने इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच सशस्त्र संघर्ष की निंदा की, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित निर्दोष लोगों की जानें चली गई। उन्होंने इसराइल और गाजा पट्टी में आतंकवादियों के बीच हाल ही में संघर्ष विराम हेतु प्रार्थना की। अपने बयान में यूनिसेफ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हजारों छात्रों की शिक्षा बाधित हो गई है क्योंकि गाजा पट्टी के सभी स्कूल बंद हैं। साथ ही इसराइल में भी 40 किलोमीटर के भीतर के स्कूल बंद हैं। यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि बच्चों, विशेष रूप से घायल और अन्य कमजोर समूहों के लिए आवश्यक सेवाओं की पहुंच बाधित है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।